Hare Krishna, Srimad Bhagavad Gita, Chapter 9, Text Number 18. इस आध्यात्मिक ज्ञान में प्रवेश करने से पहले हृदय से समस्त भौतिक इच्छाओं और बुद्धि से भौतिक विचारों का परित्याग करके गुरु और गौरंग के श्री चरणों में कृपा की याचना करेंगे, ताकि हम जो अध्ययन कर रहे हैं उसका पूरा पूरा लाभ प्राप्त हो सके, जो कि है कृष्ण प्रेम की प्राप्ति। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञान तिमिरंडस्य ज्ञानंजनाशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा महयं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्दे अहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातम् सहगण रघुनाथ वितंतं सजीवं सात्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादा सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपति गोपीश गोपीका कांता राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचनं गारंगे श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानो सुति देवी प्रणमामि हरि प्रिय। वंचाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैतं गदाधारं श्रीवासदी गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रीमद् भगवद् गीता मात की जय हो। अध्याय 9 श्लोक नंबर 18। भगवान के मुखारविंद से निकले हुए इन अत्यंत ही पवित्र शब्दों को मेरे साथ साथ उच्चारण करने का प्रयास कीजिए। भगवान कहते हैं, गतिर्भर्ता प्रभु साक्षी निवास शरणं सुहृत् प्रभवः प्रलयः स्थानं निधानं बीजमव्ययम्। गतिर्भर्ता प्रभुः साक्षी निवासः शरणं सुहृत् प्रभवः प्रलयः स्थानं निधानं బీజమవ్యయం గతిర్భర్తా ప్రభుః సాక్షీ నివాసః శరణం సుః ప్రభవః ప్రళయః స్థానం నిధానం బీజమవ్యయం. శబ్దాత్ గతి అర్థాత్ లక్ష్య, భర్తా అర్థాత్ పాలన కర్నే వాలా, ప్రభు మతలబ్ భగవాన్, సాక్షి మతలబ్ గవాహ, నివాస్ యని ధామ్, శరణ్ యని శరణ్, సుహృత్ ఘనిష్ఠ మిత్ర, ప్రభవ సృష్టి ప్రళయ సంహార, స్థానం అర్థాత్ భూమి యా స్థితి, నిధానం అర్థాత్ ఆశ్రయ యా విశ్రామ స్థల, బీజం బీజ్ యా కారణ, అవినాశీ అవ్యయం అర్థాత్ అవినాశీ. అనువాద్ తథా తాత్పర్య కృష్ణ కృపామూర్తి ఏసీ భక్తి వేదాంత స్వామి శ్రీల ప్రభుపాద్ ద్వారా. శ్రీల ప్రభుపాద్ కీ జయ హో. శ్రీల ప్రభుపాద్ జీ కేతే హై అనువాద్ దేఖియే, మే హీ లక్ష్య పాలన కర్తా, స్వామి సాక్షి ధామ్ శరణస్థలి తథా అత్యంత ప్రియ మిత్ర హూ. మే సృష్టి తథా ప్రళయ సబ్కా ఆధార ఆశ్రయ తథా అవినాశీ బీజ్ భీ హూ. తాత్పర్య శ్రీల ప్రభుపాద్ ద్వారా అత్యంత సుందర రీతి సే శ్రీల ప్రభుపాద్ జీ భగవాన్ కే ఇన్ శబ్దో కో సమ్జాయేంగే. శ్రీల ప్రభుపాద్ జీ బోల్తే హై, గతి కా అర్థ హై గంతవ్య యా లక్ష్య, జహాం హమ్ జానా చాహతే హై, లేకిన్ చరమ్ లక్ష్య తో కృష్ణ హై, యద్యపి లోగ్ ఇసే జానతే నహీ, జో లోగ్ జో కృష్ణ కో నహీ జానతే వహ పథ భ్రష్ట హో జాతే హై, ఔర్ ఉస్కీ తథాకథిత ప్రగతి యా తో ఆంశిక హోతీ హై యా ఫిర్ బ్రహ్మపూర్ణ. ఏసే అనేక లోగ్ హై జో దేవతాఓ కో హీ అప్నా లక్ష్య బనాతే హై ఔర్ తద్ అనుసార్ కఠోర్ నియమో కా పాలన కర్తే హువే చంద్రలోక్ సూర్యలోక్ ఇంద్రలోక్ మహర్లోక్ జేసే విభిన్న లోకో కో ప్రాప్త హోతే హై. కింతు యే సారే లోగ్ కృష్ణ కీ హీ సృష్టి హోనే కే కారణ కృష్ణ హై ఔర్ నహీ భీ హై. ఏసే లోగ్ భీ కృష్ణ కీ శక్తి కీ అభివ్యక్తియా హోనే కే కారణ కృష్ణ హై, కింతు వస్తుతః వే కృష్ణ కీ అనుభూతి కీ దిశా మే సోపాన్ కా కార్య కర్తే హై. కృష్ణ కీ విభిన్న శక్తియో తక్ పహుంచనే కా అర్థ హై అప్రత్యక్షతః కృష్ణ తక్ పహుంచనా. అతః మనుష్య కో చాహియే కే కృష్ణ తక్ సీధే పహుంచే, క్యూకి ఇస్సే సమయ తథా శక్తి కీ బచత్ హోగీ. ఉదాహరణార్థ యది కిసి ఊంచి ఇమారత్ తక్ చోటీ తక్ పహుంచనా హో తో ఎలివేటర్ కే ద్వారా పహుంచనే కీ సువిధా హో తో ఫిర్ ఏక్ ఏక్ కర్ సీడీ కర్కే ఊపర్ క్యూ చలా జాయే. సబ్ కుచ్ కృష్ణ కీ శక్తి పర్ ఆశ్రిత హై. అతః కృష్ణ కీ శరణ్ లియే బినా కిసీ వస్తు కా అస్తిత్వ నహీ హో సక్తా. కృష్ణ పరమ శక్తి హై, కృష్ణ పరమ శాసక హై, క్యూకి సబ్ కుచ్ ఉన్హీ కా హై ఔర్ ఉన్హీ కీ శక్తి పర్ ఆశ్రిత హై. ప్రత్యేక జీవ కే హృదయ మే స్థిత హోనే కే కారణ కృష్ణ పరమ సాక్షి హై. హమారా ఘర్ దేశ్ యా లోక్ జహాన్ పర్ హమ్ రహ రహే హై సబ్ కుచ్ కృష్ణ కా హై. శరణ్ కే లియే కృష్ణ పరమ గంతవ్య హై. అతః మనుష్య కో చాహియే కే అప్ని రక్షా యా అప్ని కష్టో కే వినాశ్ కర్నే కే లియే కృష్ణ కీ శరణ్ గ్రహణ్ కరే. హమ్ చాహే జహాన్ భీ శరణ్ లే, హమే జాన్నా చాహియే కే హమారా ఆశ్రయ కోయి జీవిత శక్తి హోనీ చాహియే. కృష్ణ పరమ జీవ హై, చూకే కృష్ణ హమారీ ఉత్పత్తి కే కారణ యా హమారే పరమాత్మా, సారీ హమారీ ఉత్పత్తి కే కారణ యా హమారే పరమ పితా హై. అతః ఉన్సే బఢ్కర్ ना तो कोई मित्र हो सकता है ना शुभ चिंतक। कृष्ण सृष्टि के आदि उद्गम और प्रलय के पश्चात परम विश्राम स्थल है, अतः कृष्ण सभी कारणों के शाश्वत कारण है। श्रील प्रभुपाद की जय हो। मूकं कुरुतु वाचालं पंगुं लंघयति किरं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारणं। श्रीमद् भगवत गीता चैप्टर 9 परम गृह्य ज्ञान। राज विद्या राजयोगो नाम। अत्यंत ही सुंदर रीति से भगवान जीव के साथ अपने संबंध के विषय में बता रहे हैं। जैसे पहले भगवान श्री कृष्ण ने हमें बताया श्लोक नंबर 16 में, अहम क्रतुर अहम यज्ञ स्वदाहम अहम औषधम मंत्रोहम अहम मे वाज्यम अहम अग्निर अहम हुतम। भगवान ने कहा जो कुछ भी है, मतलब जो भी यज्ञ के विषय है, विषय में जो कुछ भी सामग्री यूज होती है वो सब मैं हूँ। और उसके बाद भगवान ने कहा जो कोई भी संसार में पूजनीय है और वेदों के मंत्र हैं वो सब मैं हूँ। भगवान ने कहा पितामहस्य जगतो माता दाता पितामह वेद्यम पवित्रम ओंकार ऋक् साम यजुर्वेद ऋग्वेद सामवेद यजुर्वेद मंत्र ओंकार और पिता माता दाता सब कुछ मैं हूँ। और उसके बाद आज भगवान बता रहे हैं कि आपको जो भी सही कार्य करते हो, शास्त्र के अनुसार करते हो, वेदों के अनुसार जो भी कार्य करते हो, उसके द्वारा आप जो वास्तविक गति प्राप्त करना चाहते हो वो गति मैं हूँ। यहाँ पर भगवान ने बहुत ही सुंदर बात कही है। गति, गति का मतलब होता है लक्ष्य। श्री प्रभुपाद जी बोलते हैं गति का अर्थ है गंतव्य। लक्ष्य, लक्ष्य मतलब गोल, के एम ऑफ लाइफ क्या है, जीव का वास्तविक गोल क्या है, जीव वास्तव में चाहता क्या है। तो अगर मैं किसी से पूछूं कि भाई यहाँ पर जीव वास्तव में क्या चाहते हैं, आप क्या करना चाहते हो फ्यूचर में, आपका लक्ष्य क्या है, आपकी गति क्या होनी चाहिए, तो हर कोई का अपना अपना एक डेस्टिनेशन होता है। कोई सोचता है कि मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ, कोई सोचता है मैं पायलट बनना चाहता हूँ, कोई सोचता है मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना चाहता हूँ। ये होती है ना गति, कि मैं अभी जो कार्य कर रहा हूँ उसके द्वारा मेरा क्या लक्ष्य है। तो इसका अर्थ ये है कि हर किसी का लक्ष्य अलग अलग होता है, लेकिन भगवान कहते हैं गति, या ये जो भगवान ने कहा है वो किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं कहा। जैसे भगवान ने पहले कहा था पिता हमस्य जगतो, ये जगतो शब्द जो है वो अब आगे सबके साथ आएगा। मतलब ये जगत तो इसके साथ भी आएगा कि सारे जगत की मैं गति हूँ, सारे जगत का मैं प्रभु हूँ, सारे जगत का मैं निवास हूँ, सारे जगत का मैं साक्षी हूँ। समझ में आ रहा, जैसे एक लाइन बोल दी ना, मैं सारे जगत का पिता हूँ, माता हूँ, दाता हूँ और पालन करने वाला हूँ। और आगे यही बात, उसी बात को आगे जाए, गति हूँ, भरता हूँ, प्रभु हूँ, साक्षी हूँ। ठीक है, अब भगवान तो कह रहे हैं कि सारे संसार की, सारे जगत की, समस्त जीव प्राणी की गति में हूँ, खाली मनुष्य की भी नहीं, सारे जगत की गति में हूँ, लक्ष्य में हूँ। और यहाँ पर जीव तो अपना एक अलग अलग लक्ष्य बताता है। उसका कारण क्या है, उसका कारण ये है कि जीव, यहाँ श्री प्रभुपाद जी बता रहे हैं चरम लक्ष्य तो कृष्ण है, यद्यपि लोग इसे जानते नहीं हैं। वास्तव में कृष्ण चरम लक्ष्य है पर लोग उसे जानते ही नहीं हैं। तो हम अगर किसी को बोलें देखो आपका वास्तविक लक्ष्य कृष्ण है, लिखा हुआ है, कृष्ण ने कहा है, लेकिन आप उसे जानते नहीं हो, तो वो मानेगा ही नहीं, मानेगा कोई? तो फिर उसको कैसे साबित किया जाए? जैसे किसी भी व्यक्ति का कोई भी गंतव्य जो उसने डेस्टिनेशन बनाया अपना कि ये मेरा लक्ष्य है, वो उस लक्ष्य के द्वारा चाहता क्या है, वास्तविक बात ये ना, अगर कोई डॉक्टर बनना चाहता है, कोई इंजीनियर बनना चाहता है, कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना चाहता है या कोई सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना चाहता है, तो उसके द्वारा वो क्या प्राप्त करना चाहता है वास्तविक, हमें ये नहीं पूछना। अभी कोई अगर डॉक्टर बन जाए, ठीक है, वो डॉक्टर बन गया, उसको MBBS की डिग्री मिल गई, ये उसका लक्ष्य था, लेकिन उसका लक्ष्य यहाँ पर आके खत्म होता नहीं है। उसके द्वारा वो चाहता है कि मैं बहुत बहुत धन कमाऊं, बहुत बहुत फेम कमाऊं, बहुत बहुत सुविधाएं कमाऊं, जिसके द्वारा मैं आनंदित हो सकूं। यही है, इसके अतिरिक्त तो कोई और, या फिर चलो ठीक है, अगर वो इसके द्वारा कमाना नहीं चाहता है, कोई और उसकी मेंटेलिटी है कि मैं जन सेवा करूं, सबकी सेवा करके मैं आनंदित हो जाऊं, ऐसा है। अब आपका कोई भी लक्ष्य है, उसके द्वारा आप क्या चाहते हो, आनंदित होना चाहते हो। आनंदित होना जीव मात्र का एकमात्र लक्ष्य है। आप चाहे कुछ भी बनना चाहते हो, चाहे कुछ भी प्राप्त, आप आज कोई लड़की बोलेगी मेरा लक्ष्य है मेरा विवाह इस लड़के के साथ हो जाए, कोई लड़का बोलेगा मेरा लक्ष्य ये है कि मुझे यह लड़की प्राप्त हो जाए, कोई सोचेगा मेरा लक्ष्य ये है कि मुझे यह घर मिल जाए, कोई सोचेगा मुझे बहुत बड़ा बंगलो मिल जाए, कोई सोचेगा मुझे बहुत बड़ी गाड़ी मिल जाए, या फिर कुछ भी, मेरा बहुत बड़ा लॉटरी लग जाए। सब जो भी आप चाह रहे हो, उसके द्वारा अल्टीमेटली आपकी इच्छा है, आप आनंदित होना चाहते हो। और कृष्ण क्या है, सच्चिद आनंद विग्रह। आनंद वास्तव में जीव आत्मा का वास्तविक लक्ष्य है, लेकिन क्योंकि हम इस भौतिक शरीर के अंदर कैद हो जाते हैं, इसलिए अज्ञानता के कारण हम उस आनंद को इस भौतिक शरीर से रिलेटेड वस्तु और व्यक्तियों के द्वारा प्राप्त करना चाहते हैं। वास्तविक लक्ष्य आनंद जो है वो कृष्ण के द्वारा प्राप्त होता है, इसलिए भगवान कहते हैं गति, गति मैं हूँ। और श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कि क्योंकि वो वास्तविक कृष्ण को नहीं जानता, वास्तविक गंतव्य को नहीं जानता है, इसलिए उसकी तथाकथित प्रगति, वो जो सोचता है ये मिल जाए वो मिल जाए वो मिल जाए, तो वो आंशिक है, उससे वास्तविक आनंद प्राप्त नहीं होगा। अगर आपको इस भौतिक जगत में आपका चुना हुआ लक्ष्य प्राप्त हो भी जाए, तो भी कंप्लीट आनंद आपको कभी नहीं आएगा जब तक आप कृष्ण से दूर हो, जब तक आप कृष्ण के शरण में नहीं आते हो, जब तक आप कृष्ण से प्रेम नहीं करते हो, तब तक वास्तविक गति ने, गति का मतलब है आनंद, आपको वो वस्तु मिल जाए और आपके पास प्राप्त करने योग्य और कुछ ना बचे, कोई ऐसी चीज जो, गति का मतलब है वो लक्ष्य जो आप प्राप्त कर लो और आप कहो कि बस आप मुझे और कुछ नहीं चाहिए। क्या कभी हुआ है इस भौतिक जगत में ऐसा कि किसी व्यक्ति ने इच्छा की हो मुझे ये मिल जाए और उसे मिल जाए और उसने बस किया हो? अगर किसी का लक्ष्य होता है कि मुझे बंगलो मिल जाए, उसको मिल जाता है, तो क्या वो सोचता है बस अभी इनफ है, अभी मैं यहीं पर मरना चाहता हूँ? नहीं, उससे अधिक चाहता हूँ। इस एक ख्वाहिश पूरी होने के बाद हजारों ख्वाहिशें दूसरी आती हैं। ये बताने की बात नहीं है, ये सब पता है सबको, बताने की बात यह है कि वास्तविक लक्ष्य कृष्ण है, और जब तक वास्तविक लक्ष्य तक नहीं पहुंचते, तब तक जीव आनंदित नहीं होगा। तो श्रील प्रभुपाद जी बोलते हैं इसीलिए यह जो आनंद है वो आंशिक है, थोड़ा है और ब्रह्मपूर्ण है। वास्तव में आनंद इससे हमारे शरीर को थोड़ी देर के लिए आता है, परंतु यह केवल ब्रह्म है, क्योंकि हम तो शरीर है नहीं। और श्रील प्रभुपाद जी आगे बोलते हैं कि कुछ लोग उससे भी बड़े चढ़े होते हैं, जो भौतिक जगत में अपने लक्ष्य को नहीं ढूंढते हैं, बल्कि सोचते हैं यहाँ पर यज्ञ करें, तपस्या करें, दान दें, अच्छे कार्य करें, सकाम कर्म करें और उसके बाद उच्च लोकों में जाएं। हम गति पर बात कर रहे हैं, गति का मतलब होता है लक्ष्य। कुछ लोगों ने अपना लक्ष्य इस भौतिक जगत में बनाया होता है, जो बिल्कुल बेवकूफ होते हैं, क्योंकि ये तो क्षणिक है। आज आपने जो चाहा वो आपको कल मिल गया, और प्राप्त होने के बाद परसों आपकी मृत्यु हो गई, तो कौन आनंद उठाएगा उसके द्वारा? आपने इतनी मेहनत से जो घर बनाया, जो गाड़ी ली, जो बंगलो लिया, जो भी कुछ लिया, जो भी प्राप्त किया, अगर आपको वह वस्तु यूज करने का अवसर ही नहीं मिला तो क्या फायदा, जितना आपने स्ट्रगल की सब जाया। तो वो क्या सोचते हैं, हम कुछ ऐसा प्राप्त ऐसा कार्य करें जिसके द्वारा हम उच्च लोक को प्राप्त करें, जैसे इंद्रलोक, स्वर्गलोक, सूर्यलोक, महरलोक, इन सारे लोकों में आनंद प्राप्त करेंगे। यहाँ पर मेहनत करेंगे, मेहनत इस भौतिक जगत में करेंगे, तपस्या करेंगे, दान देंगे, अच्छे कार्य करेंगे और आगे जाके आनंद करेंगे दूसरे लोकों में। लेकिन श्रील प्रभुपाद जी बोलते हैं वो सारी सृष्टियां कृष्ण की ही हैं, जो कुछ पूरी सृष्टि जो भगवान ने, ये सारी सृष्टि भगवान ने बनाई है। तो आप कहीं से भी आनंद प्राप्त करना चाह रहे हो तो अल्टीमेटली वो आनंद आ रहा है कृष्ण के द्वारा। तो कृष्ण के द्वारा किसी कृष्ण की शक्ति तक पहुंचकर आनंद प्राप्त करने का अर्थ है अप्रत्यक्ष कृष्ण तक पहुंचना। मतलब प्रत्यक्ष का मतलब होता है डायरेक्ट से कृष्ण के प्राप्त, कृष्ण को प्राप्त करके आप आनंद हो, और अगर डायरेक्ट से कृष्ण को स्वीकार नहीं कर रहे हो अप्रत्यक्ष यानी इनडायरेक्टली वो आनंद कृष्ण से ही आ रहा है, तो वास्तव में आपकी गति कृष्ण है। क्योंकि आनंद जितना भी जितना का जितना आपका लक्ष्य आनंद है और सारा का सारा आनंद आ रहा है कृष्ण तक। श्रील प्रभुपाद जी बोलते अतः मनुष्य को चाहिए कि कृष्ण तक सीधे पहुंचे, क्योंकि इससे समय तथा शक्ति का बचत होगा। तो वास्तव में हम अगर भौतिक जगत में ही आनंद ढूंढते रहेंगे या आध्यात्मिक जगत या दूसरे लोकों में आनंद ढूंढेंगे तो वो क्या होगा, इससे हमारा समय नष्ट होगा और इससे हमारी शक्ति नष्ट होगी। लेकिन ऐसे करते 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 हमें बहुत जन्मों के बाद एक दिन यह रियलाइज हो जाएगा कि वास्तव में ये आनंद मुझे नहीं चाहिए, मैं इटर्नल हूँ। क्योंकि जीव इटर्नल है, अनित्यम असुखम, ये जो भौतिक जगत है वो अनित्य है, लेकिन जीव नित्य है, अजो नित्य है शाश्वतो यम पुराणो, ये दोनों अलग अलग क्वालिटीज हैं। जीव नित्य है और शाश्वत है। भौतिक जगत जितना भी है, चाहे वो स्वर्ग लोक क्यों ना हो, चाहे वो इंद्र लोक क्यों ना हो, चाहे वो चंद्र लोक क्यों ना हो, वो क्या है, अनित्य है और असुख है। तो इटर्नल जीव कभी भी भौतिक किसी भी अनित्य वस्तु से वास्तविक आनंद प्राप्त नहीं कर सकता, इसलिए बार 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 धोखा खाता है और खाते खाते एक दिन, मतलब अच्छे कार्य करता है, शुभ कार्य करते 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 एक दिन ऐसा आता है कि उसे यहाँ रियलाइज हो जाता है, ये जो सब मैंने अपने डेस्टिनेशंस बनाए हुए थे, मैंने अपने लक्ष्य बनाए हुए थे, मैंने अपनी गति बनाई हुई थी, वास्तव में वो गति मेरी नहीं थी, वास्तव में मेरी वास्तविक गति कृष्ण की है। तो ये सब जरूरी नहीं है कि हम इन सब गतियों को पार करके 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 चोट खाएं उसके बाद ही इस बात को रियलाइज करें कि कृष्ण की भक्ति करनी चाहिए। श्रील प्रभुपाद जी बोलते हैं अगर किसी बहुत ही ऊंची इमारत में, बहुत ही ऊपर अगर कोई बिल्डिंग हो, उस पर जाने के लिए लिफ्ट है, तो फिर सीढ़ियों से चढ़कर जाने वाला तो बेवकूफ होगा ना। लिफ्ट लगी हुई है तो आप समय और शक्ति को बचाओ और डायरेक्ट से लिफ्ट में बैठो और वास्तविक गति तक पहुंच जाओ, है ना। आपको तो आखिरी मंजिल पर, टॉप फ्लोर पर पहुंचना है, तो उसके लिए सीढ़ियों का इंतजार, सीढ़ियों के ऊपर क्यों चढ़ रहे हो, लिफ्ट में बैठ जाओ। भगवान को प्राप्त करना ही जीवन का अल्टीमेट गोल है, वास्तविक आनंद प्राप्त करना ही जीवन का वास्तविक लक्ष्य है। भगवान ने कह दिया मैं गति हूँ, तो फिर उसको प्राप्त करने का सीधा और सरल उपाय जो शास्त्र ने कहा है, जो महाप्रभु ने बताया है, जो गुरु महाराज ने कहा है, जो हर एक संत महात्मा ने बताया है कि भगवान तक पहुंचने का एक ही रास्ता है, कोई दूसरा कार्य करने की आवश्यकता नहीं है। कलैव नास्तैव 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 गतिरन्यथा, कलयुग में गति प्राप्त करनी है, आपको वास्तविक लक्ष्य प्राप्त करना है, तो उसका एक ही तरीका है, हरे नाम हरे नाम हरे नाम एव केवलम, हरि का नाम हरि का नाम हरि का नाम, एकमात्र हरि का नाम ही एकमात्र साधन है। तो भगवान तक पहुंचने का इतना सरल उपाय छोड़कर हम अलग अलग गति को, लक्ष्य को अपना वास्तविक लक्ष्य समझकर इतने जन्मों से भटक रहे हैं और अभी तक हम यह रियलाइज नहीं कर पा रहे हैं कि वास्तव में हमें कृष्ण तक पहुंचना है, तो फिर पता नहीं और भी कितने जन्मों तक यूं ही भटकना पड़ेगा। उसके बाद भगवान कहते हैं भर्ता, भर्ता मतलब पालक, पालक का मतलब होता है पालन करने वाला। भगवान कहते हैं भौतिक जगत में आप समझते हो कि भाई हमारे पिता हमारा पालक पालन कर रहे हैं, या जो भी इस संसार में हम किसी को मालिक देता है, मतलब अगर कोई नौकर होता है तो उसका मालिक देता है, कोई किसी कोई सेठ देता है, लेकिन वास्तव में उन सब के द्वारा आपका पालन करने वाला मैं हूँ। भगवान कहते हैं प्रभु साक्षी, प्रभु का मतलब होता है भगवान, क्योंकि सबका जितने भी वस्तुएं हैं वो सबका स्वामी तो मैं हूँ, है ना। चाहे वो आपको किसी भी वस्तु प्राप्त हुई, कोई भी वस्तु प्राप्त हुई, अन्न प्राप्त हुआ है, जल प्राप्त हुआ है, वायु प्राप्त हुई है, और कुछ भी सुविधा प्राप्त हुई है, उसका वास्तविक भगवान मैं हूँ, वास्तविक भोक्ता मैं हूँ। और मैंने तुमको किसी के भी द्वारा यदि वो प्राप्त प्रदान की है तो वास्तव में पालन तो मैं कर रहा हूँ ना तुम्हारा। जैसे मैं आपको समझाऊं कि अगर किसी फैक्ट्री में हम काम करते हैं तो उस फैक्ट्री के जो छोटे छोटे वो होते हैं ना वर्कर्स, उनको सैलरी कौन देता है? उस फैक्ट्री का मैनेजर देता है, लेकिन वो मैनेजर अपने पैसे नहीं देता उसको, मतलब अपने पॉकेट से निकाल के नहीं देता। वो मैनेजर भी जो वास्तव में इस फैक्ट्री का बॉस होता है, उसके दी हुई जो सैलरी होती है वो सारे वर्कर्स को देता है ना। तो उसी तरह से हमें चाहे किसी के द्वारा कुछ भी प्राप्त हो रहा है, वास्तव में ईश्वर परम कृष्ण, परम ईश्वर कृष्ण है, परम नियंता कृष्ण है, परम कंट्रोलर कृष्ण है, तो वही उन्हें भगवान के द्वारा ही हमें प्राप्त होता है। ऐसे कहते हैं देवी दे देवता दे यही मजा है शोर, परंतु देने वाला दाता है कोई और। वास्तविक दाता भगवान कहते हैं प्रभु साक्षी भर्ता, ये सब मैं हूँ। भगवान कहते हैं साक्षी मैं हूँ, साक्षी का मतलब होता है गवाह। भगवान हृदय में बैठे हुए हैं। भगवान बताते हैं चैप्टर नंबर 13 वर्स नंबर 23 में, उपदृष्टा अनुमंता च भर्ता भोक्ता महेश्वरम परमात्मेति चाप्युक्तम देहेस्मिन् पुरुषः परा। इस देह में एक दूसरा परम पुरुष है जिसको परमात्मा कहा जाता है, परमात्मेति चाप्युक्तम, और उसका कार्य क्या है? उपदृष्टा अनुमंता च, आप क्या कार्य कर रहे हो उसका साक्षी बनना उसका कार्य है, उसका गवाह बनना उसका कार्य है। कोई ऐसा कार्य, शुभ कार्य जो आपने किया हो, कभी भगवान का नाम लिया हो, कभी भगवान को प्रणाम किया हो, कहीं ऐसा ना हो कि आपको उसका फल मिलना रह जाए, ये उसकी ड्यूटी है। कोई भी कार्य जीव करता है, चाहे वो शुभ हो या अशुभ हो, कभी भी ऐसा नहीं होता कि आपके किसी कर्म की फल देने में कभी आपके साथ अनजस्टिस हो, क्योंकि साक्षी जो देने वाला है वो इतना सतर्क है कि आपके छोटे से छोटे कार्य को भी ध्यान से देखता है और नोट करता है। और सबसे बड़ी बात सुहृत, आगे लिखा भगवान ने, यहाँ का भगवान ने निवास शरणम, वास्तविक निवास जहाँ पर जाके जीव को आनंद आए, जहाँ से जीव को कभी भी निकाला ना जाए। देखो अभी इस भौतिक जगत में हम लोग सोचते हैं हमारा आपका निवास स्थान कहाँ है, किसी को बोलते हैं तो फिर वो बोलेंगे कि भाई अपने घर का एड्रेस बताएंगे, लेकिन वो घर क्या उसका हो सकता है? क्योंकि वो घर आज उसका है तो उस जगह पर पहले कोई और रहता था। एक बार क्या हुआ, अकबर बादशाह के जो एक बहुत ही सुंदर उनका एक गार्डन था, अपना गार्डन जहाँ पर सिर्फ वो अपनी रानियों के साथ आते थे, वहां पर एक भिखारी आके बैठ गया। तो जब अकबर बादशाह ने जाके उसको देखा तो कहा कि तुम मेरे इस प्राइवेट गार्डन में आके क्या कर रहे हो? तब उसने कहा ये आपका है? तो बोला हाँ मेरा है, तुम क्यों आए हो यहाँ पर? बोला आप जानते हैं इसके पहले ये किसका था? तो बोला हाँ मेरे पिताजी का था। बोला उससे पहले उनके पिताजी का? बोला उससे पहले उनके पिताजी। बोला फिर आपके बाद? बोला मेरे बेटों का और उसके बाद उनके बेटों। तो बोला ये प्राइवेट कैसे हो सकता है, ये आपका पर्सनल कैसे हो सकता है? ये तो एक धर्मशाला है ना, जिस पर कुछ समय के लिए आपको भेजा जाता है और फिर आप वहां से निकल जाते हो, फिर आप कोई और आता है। तो वास्तव में इस भौतिक जगत में आप चाहे कहीं पर भी रहते हो, चाहे आपका कहीं पर भी घर हो, चाहे इस पृथ्वी लोक पे हो, जन लोक में हो, स्वर्ग लोक में हो, ब्रह्म लोक में हो, तो भगवान कहते हैं आब्रह्म भुवनालोका पुनरावृत्ति नोर्षना, वापिस इस भौतिक जगत में आना पड़ेगा। लेकिन माम उपैत्य तो कौन थे पुनर्जन्म न विद्यते, तो जब कोई मेरे पास आ जाता है तो फिर उसे वापस आना नहीं पड़ता। यानी वास्तविक जो निवास स्थान है वो भगवान श्री कृष्ण है। आगे कृष्ण कहते हैं शरणम। शरणम शब्द बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक जीव को सदैव एक शेल्टर की आवश्यकता होती है, शरण की, शरण स्थली की आवश्यकता होती है, क्योंकि हम बगैर किसी शरण स्थली के सदैव इनसिक्योर फील करते हैं। तो भगवान कहते हैं कि इस भौतिक जगत में आप किसी की भी शरण ले लो, है ना, जैसे छोटे बच्चे होते हैं माता पिता की शरण लेते हैं, पति पत्नी अपने पति की, लेकिन ये सारे शरण जो हमने अपनी शरण स्थली बनाए हुए हैं वो तो खुद भी समाप्त होने वाले हैं, है ना। एक दिन ऐसा आएगा सब काल के काल में खत्म हो जाएंगे। ना केवल भौतिक जीव बल्कि अगर कोई देवी देवताओं की भी शरण लेता है तो वो सब भी नाशवान है। वास्तव में शरण वो दे सकता है जो कभी भी नष्ट न हो, जिसका बल कभी भी खत्म न हो, जो हर एक समय पर हमारी सुरक्षा कर सके, हर एक बात से हमारी सुरक्षा कर सके, वही वास्तविक शरण होती है। तो भगवान कहते हैं यदि केवल मेरी शरण में आ जाओगे तो फिर वो वास्तविक शरण स्थली है और मेरे अतिरिक्त कोई भी तुम्हें वास्तविक शरण नहीं दे सकता। आगे कहते हैं सुहृत। बहुत ही सुंदर शब्द भगवान ने कहा। सुहृत का मतलब होता है आपका घनिष्ठ मित्र। भगवान पहले कहते हैं साक्षी हूँ, हृदय के अंदर बैठकर देख रहा हूँ कि तुम क्या करतूत कर रहे हो, लेकिन प्रेम करता हूँ, सुहृत हूँ, तुम्हारा घनिष्ठ मित्र हूँ। जैसे हम अक्सर यह उदाहरण देते हैं कि भौतिक जगत एक वृक्ष है और उसके ऊपर दो पंछी बैठे हुए हैं। एक पंछी उस वृक्ष के फलों को खाना खाने की इच्छा करता है। ये उपनिषद में ऐसा उदाहरण आता है कि वो पंछी सदैव क्या चाहता है कि इस भौतिक जगत के वृक्ष के फलों का टेस्ट लूं। तो वो एक के बाद दूसरे फल का, दूसरे के बाद तीसरे फल का, चौथे फल का टेस्ट लेता जाता है, लेता जाता है, लेता जाता है, और पीछे वाला जो पंछी होता है वो सदैव उसको साक्षी बनकर देख रहा होता है। वो अब उसके आनंद में हस्तक्षेप नहीं करता उसके पास, क्योंकि जो पहला वाला पक्षी है जो आनंद लेना चाहता है उसके पास पूरा फ्री विल है। वो पीछे वाला पंछी जो होता है वो उसको बला थी नहीं कहता कि बंद करो ये सब, लेकिन इच्छा यही करता है, सुहृत है, वो इंतजार करता है, वो उसे छोड़कर कभी नहीं जाता। चाहे वो आनंद भोगने की इच्छा करने वाला पंछी किसी भी खतरनाक टहनी पर क्यों न चला जाए, किसी भी दुखदायक स्थिति में क्यों न चला जाए, पीछे बैठने वाला साक्षी जो है वो कभी भी उसका साथ नहीं छोड़ता, क्योंकि वो उसका घनिष्ठ मित्र है। पूरी दुनिया, एक समय ऐसा आता है जब हमारा अच्छे दिन नहीं होते हैं तब क्या होता है, सारा संसार हमारा साथ छोड़ देता है, लेकिन भगवान कभी भी हमारा साथ नहीं छोड़ते। एक बार एक भक्त बांके बिहारी के पास गए और बोले, भगवान मैं जानता हूँ कि तुम मेरी बात सुनते हो, मैं जानता हूँ कि तुम मुझे देखते हो, मैं जानता हूँ कि तुम मेरे प्रेम को स्वीकार करते हो, लेकिन मैं ये बात को अनुभव करना चाहता हूँ। कुछ ऐसा करो ना कि मुझे पता चले कि तुम मेरे साथ हो। तो बांके बिहारी ने कहा, हाँ ठीक है, आज जब तुम सुबह को समुद्र के किनारे पर जाओगे तो तुम्हें यह अनुभव होगा कि मैं तुम्हारे साथ साथ चल रहा हूँ। तो वह भक्त भी समुद्र के किनारे पर जब चल रहा था तो उसने अचानक से देखा कि उस समय समुद्र के किनारे पर पैरों के चार निशान थे, वो एक था और चार निशान थे। उसे यह अनुभव हुआ कि बांके बिहारी भी मेरे साथ साथ चल रहे हैं। वो बहुत ज़्यादा दुख, मतलब उसको इतना ज़्यादा सुख आ रहा था खुशी इतनी हो रही थी कि आंखों से आंसू निकल गए। उसको ऐसा लगा कि भगवान मेरे साथ हैं। और देखते ही देखते वो भक्त जो था उसने बहुत प्रगति की अपने कारोबार में, बहुत ज़्यादा उसके पास धन आ गया, बंगलो गाड़ी सब कुछ आ गया। और वो रोज़ जब भी जाता था माँ के बिहारी से प्रार्थना करता था और देखता था चार कदम होते थे, उसको लगता था भगवान मेरे साथ है। लेकिन वो कुछ समय के बाद अपने बिजनेस में इतना ज़्यादा बिजी हो गया कि वो बांके बिहारी के दर्शन करने भी नहीं जाता था। हम जानते हैं जैसे जैसे धन आता जाता है, सुख आता जाता है, हम भगवान से दूर होते जाते हैं। तो फिर बहुत समय हो गया वो बांके बिहारी के दर्शन करने नहीं गया। एक दिन उसके कारोबार में बहुत नुकसान हो गया, बहुत लॉस हो गया, सब कुछ जो था वो दांव पे लग गया। मतलब अभी उसके पास कुछ दिवालिया हो गया, कुछ नहीं बचा, खाने के भी वादे पड़ गए। तो फिर अब उसे वापस से अपना दोस्त याद आया, बोले ये सब तो मुझे कृष्ण की कृपा से मिला था ना, आज फिर मैं बांके बिहारी के दर्शन करने जाता हूँ। बांके बिहारी के दर्शन करने गया और बांके बिहारी से बोला कि मैं काफ़ी समय से आपका चिंतन नहीं करता था, मैं बहुत ज़्यादा व्यस्त हो गया था भौतिक कार्यों में, मैं फिर से आपके पास आया हूँ और आपको अनुभव करना चाहता हूँ। मुझे एक बार फिर यह रियलाइज़ कराइए कि आप मेरे साथ हैं। तो इतना कहने के बाद बांके बिहारी ने कोई उत्तर नहीं दिया और वो जब समुद्र के पास चलने लगा तो उसको एक ही कदम दिखाई देने लगे, बस सिर्फ उसको अपने ही चरण, मतलब उसको ऐसा लगा कि दो ही चरण नजर आ रहे थे उसको। उसको बहुत दुख हुआ, उसने सोचा संसार ने तो साथ छोड़ दिया, संसार का कोई भी व्यक्ति अब मेरे साथ नहीं है और भगवान ने भी साथ नहीं दिया। सारी जब मेरे पास धन था, संपत्ति थी, तब सब मेरे साथ चलते थे और आज जब मेरे पास कुछ नहीं है तो कृष्ण भी मेरे साथ। कौन कहता है कि कृष्ण सुहृद है, कौन कहता है कि कृष्ण मित्र है? मित्रता ऐसे निभाते हैं, दुख के समय छोड़ के चला गया। बहुत रो रहा था और कृष्ण को याद करते करते फिर से उसने अपना कारोबार स्टार्ट किया और धीरे 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 फिर से वापस से डिवेलप हो गया और उसके पास बहुत सारा धन आ गया। और फिर बांके बिहारी के पास गया और कहा, ये सब आपकी ही कृपा है प्रभु, और अब मेरे पास सब कुछ आ गया है वापस से, धन्यवाद है आपका बहुत, लेकिन मैं अब आपको कभी नहीं भूलूंगा। तो फिर है ना, अभी वापस से आज जब समुद्र के किनारे पर चला तो उसको वापस से चार पैर दिखाने लगे। तब उसको बहुत आश्चर्य हुआ, बोला ये क्या बात है, जब पहले मेरे पास कुछ भी नहीं होता है तब भगवान भी मेरा साथ छोड़ देते हैं और जब धन संपत्ति आती है तो भगवान भी मेरे साथ साथ चलते हैं। तब उससे रहा ना गया और बांके बिहारी से कहा, ये क्या बात है प्रभु, इस भौतिक जगत के लोगों को लोग तो होते ही मतलब ही हैं, जिसके पास धन होता है, सुख होता है, संपत्ति होती है, उसी के पास जाते हैं, मगर आप तो निर्धन के नाथ हैं, पतितों को पावन करने वाले हैं, आप तो सबका सुहृद है, तो फिर आप ऐसा क्यों करते हैं कि जब मेरे पास धन नहीं होता तो आप ही मेरा साथ छोड़ देते हैं? बोला तुमसे किसने कहा कि जब तुम्हारे पास धन नहीं था तो मैंने तुम्हारा साथ छोड़ दिया? बोला कहने की क्या आवश्यकता है, समुद्र के किनारे गया था, तुम्हारे चरणों के निशान तो थे ही नहीं। बोला किसके निशान थे? बोला दो ही थे। बोला वो मेरे ही तो थे, मैं ही तो था वो। बोला फिर मेरे चरणों के निशान? बोला जब तुम दुखी होते हो तो मैं तुम्हें अपनी गोद में उठा लेता हूँ ताकि तुम्हें वह दुख महसूस ना हो, इसलिए चरण तो केवल मेरे ही होते हैं धरती पर। मतलब कहने का अर्थ यह है कि जब जब भक्त के ऊपर कोई कष्ट आता है तो भगवान उस कष्ट को अपने ऊपर ले लेते हैं। जैसे हमारे बहुत ही बड़े आचार्य हरिदास ठाकुर, जिनको जो मुसलमान खानदान में उत्पन्न हुए थे और भगवान का बहुत नाम लेते थे, एक दिन में 300,000 बार महामंत्र का जप करते थे, बहुत प्रेम से भगवान के पवित्र नाम का जप करते थे और इसीलिए चैतन्य महाप्रभु ने उन्हें नाम आचार्य का पद दिया था। और वहाँ उस समय मुसलमान राजाओं ने जब देखा कि ये मुसलमान होकर भगवान के पवित्र नाम का जप करता है तो इस तरह से तो दूसरे मुसलमान भी बिगड़ जाएंगे। फिर धीरे धीरे मुसलमान जो है वो सब दूसरे धर्म को स्वीकार करते जाएंगे, तो इस व्यक्ति को ऐसी सजा मिलनी चाहिए कि कोई दूसरा मुसलमान भगवान का नाम लेने की गलती ना करे। फिर वहां के राजा उसने यहाँ मतलब हुक्म दिया कि इस हरिदास ठाकुर को 22 बाजारों में जाकर कोड़े मारे जाएं और इतना उसको मारा जाए, इतना मारा जाए कि इसके प्राण निकल जाएं। हरिदास ठाकुर को 22 बाजारों में एक एक करके इतना पीटा गया, इतना पीटा गया। लेकिन हरिदास ठाकुर भगवान के शुद्ध भक्त थे, उनको जब मार पड़ती थी तब वो भगवान से एक प्रार्थना करते थे, भगवान इन्हें क्षमा करना, ये कुछ नहीं जानते, भगवान आपकी महिमा को नहीं जानते, आपकी भक्ति की महिमा नहीं जानते, आप इन्हें क्षमा करना। जब कोड़े पड़ते थे तो भगवान का सिंहासन ढोलने लगता था और भगवान जो है वो उसकी रक्षा करने के लिए, उन दुष्टों का विनाश करने के लिए आने के लिए तैयार हो जाते थे। लेकिन फिर हरिदास महाराज जो है वो प्रार्थना करते थे कि नहीं भगवान, इन पर कोई कष्ट, इनको कोई कष्ट मत देना, इनको कोई दुख नहीं देना, इनको कोई ज्ञान नहीं है। और जब ऐसा कहते थे तो भगवान वापिस से बैठ जाते थे, वापिस से कोड़े। लेकिन भगवान कैसे बर्दाश्त कर सकते हैं, ये भगवान कैसे सहन कर सकते हैं कि उनके भक्त को कोई कष्ट मिले। फिर भगवान ने एक उक्ति सोची, बोला मैं अपने भक्त को तो दुखी नहीं देख सकता और अपने भक्त की प्रार्थना को भी अस्वीकार नहीं कर सकता। तो फिर भगवान ने क्या कहा, ऐसे भगवान ने क्या किया, अपना ही एक स्वरूप जो है वो हरिदास ठाकुर के ऊपर ऐसे चिमटा दिया। मतलब अब जैसे शोल उड़ते ना, तो भगवान तो कोई भी स्वरूप धारण कर सकते हैं, तो हरिदास ठाकुर जी के ऊपर ओढ़नी बनकर खुद को लिपटा दिया। और अब जो कोड़े लग रहे थे वो हरिदास ठाकुर महाराज को बिल्कुल भी असर नहीं कर रहे थे। भगवान के स्पर्श से हरिदास ठाकुर का सारा दुख, सारा कष्ट दूर हो गया और अब जो भी कष्ट हो रहा था वो डायरेक्ट से भगवान को हो रहा था, भगवान के ऊपर लग। भगवान अपने को दुखी देख सकते हैं परंतु अपने मित्र को, अपने भक्त को कभी भी दुख में नहीं देख सकते। और फिर जब हरिदास महाराज चैतन्य महाप्रभु के पास आए तो उन्होंने चैतन्य महाप्रभु के शरीर पर यह कोड़ों के निशान देखे, बोले महाप्रभु ये कैसे हुआ। तब महाप्रभु ने कहा कि तुम मुझे कुछ करने नहीं दे रहे थे, उनको कुछ कष्ट ना हो यही प्रार्थना कर रहे थे, तो फिर वो सारा कष्ट मैंने अपने ऊपर ले लिया। उसके बाद वास्तव में कहने का अर्थ ये है कि भगवान यदि किसी का सुहूर्त हो तो कोई उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। भगवान यदि आपको देना चाहे, भगवान यदि आपकी सुरक्षा करना चाहता है, भगवान यदि आपका साथ दे रहा है, यदि आप भगवान के शरण में हो तो भगवान का सब कुछ है, आपको किसी और के पास जाने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि भगवान के एक नहीं करोड़ों हाथ हैं, देंदा देवे तो लेंदा थक जाए। आपके दो हाथ हैं, कितना लोग है, हजार हाथों से वो देने पर आता है, आपके ऊपर कृपा करने के लिए आता है, तो हम कृपा प्राप्त करते करते थक जाएंगे, इतनी कृपा है भगवान के पास। हमारे अंदर श्रद्धा होनी चाहिए और यदि हम भगवान की शरण में नहीं जाते, यदि हम भगवान से शत्रुता मोल लेते हैं और जब वो हजार हाथों पर लेने आ जाए, वो हजार हाथों वाला है, यदि वो हमसे लेने आ जाए तो भला हम अपने दो हाथों से कितना बचा पाएंगे। हमारे पास जो कुछ भी शक्ति है, सामर्थ्य है, जो कुछ सुविधा है, जो कुछ भी है वो भगवान का दिया हुआ है, इसे भगवान की शरण में जाकर इस बात को स्वीकार करना चाहिए कि भगवान सब कुछ तुम्हारा है। और जब हम ऐसा स्वीकार करते हैं तो वो भगवान कहते हैं हाँ ठीक है, ये सब कुछ मेरा है और मैं तुम्हारा हूँ। एक बहुत ही सुंदर एक बात याद आई कि एक बहुत ही साहूकार, बहुत ही रिच व्यक्ति था, उसके पास एक संत गया, बहुत ही अच्छा संत था, शुद्ध वैष्णव था। वो गया और देखा कि इतना ज्यादा धनी व्यक्ति है, इसके पास इतना बड़ा बंगलो है, इतना बड़ा घर है वो संत को देखकर बहुत खुश हुआ, संत के चरणों को धोकर चरणामृत लिया और संत को कहा, कृपया मेरे घर में अपने चरण घुमाइए ताकि हमारे घर में शुद्ध भक्ति हो, हमारी संतान शुद्ध भक्त बने और भगवान की कृपा बने। तो फिर ना संत ने कहा, चलो दिखाओ मुझे। बहुत बड़ा घर था, बहुत विशाल घर था, और वो सारे घर में घुमा रहा था। तो बोला संत ने कहा, आपका घर तो बहुत अच्छा है, महल के जैसा है। तभी उस व्यक्ति ने कहा, नहीं महाराज, जब मैंने जन्म लिया था तो अपने साथ कुछ नहीं लेकर आया था, ये सब तो भगवान की कृपा है, आप जैसे संतों का आशीर्वाद है, मेरा इसमें कुछ नहीं, ये सब भगवान का ही, आपका ही है। फिर आगे कहे, तो फिर देखो उनके घर में बहुत ही सुंदर फर्नीचर था, फर्नीचर शीशम की लकड़ी का बना हुआ था। तो फिर उसको देखकर संत ने कहा, आपका फर्नीचर तो बहुत अच्छा है, आपने बहुत अच्छा फर्नीचर बनवाया है। तब उस व्यक्ति ने कहा, नहीं प्रभु, ये मेरा नहीं है, ये सब तो भगवान का दिया हुआ है, मेरा तो कुछ भी नहीं है, क्योंकि जब मैंने जन्म लिया था तो मैं कुछ भी नहीं लेके आया था, ये सब भगवान की कृपा से मिला। उसके बाद उनके पुत्रों के, उनके जो संतान है, उसके कमरे में गए तो बहुत ही सुंदर कमरा था, और वो संतान भी बहुत सुशील थी, संत को देखकर, शुद्ध भक्त को देखकर उनके चरणों में प्रणाम किया और आशीर्वाद दिया। तब तो संत से रहा ना गया और कहा कि इतना धन होने के बावजूद भी आपने अपने बच्चों को बहुत अच्छे संस्कार दिए हैं, कितने सुंदर संस्कार दिए हैं, बहुत आज्ञाकारी और आदर करने वाले आपके संतान हैं। तब इसने कहा, नहीं भगवान, ये सब तो मेरे भगवान की कृपा है, ये सब तो आप जैसे संतों का आशीर्वाद है, मेरा कुछ नहीं है, ये सब मैं तो कुछ नहीं लेकर आया था, ये सब तो भगवान की कृपा से प्राप्त हुआ है। ऐसे करते करते पूरा घर घुमाया और फिर अंत में एक कमरे में गए, बहुत ही सुंदर और शांत वातावरण था। बहुत आगे देखा, तुलसी महारानी का बहुत ही सुंदर एक पौधा रखा हुआ था और भगवान का बहुत ही सुंदर अल्टर था, सोने का बना हुआ था, उसके अंदर राधा गोपीनाथ बैठे हुए थे और बहुत ही सुंदर श्रृंगार किया हुआ था। जब संत ने देखा तो बहुत खुश हुआ, बहुत आनंदित हुआ, बोला ऐसा लग रहा है कि इस भौतिक जगत में वृंदावन में आ गया हूं, ये भगवान आपके हैं। तब उस व्यक्ति ने कहा, हाँ ये मेरे हैं, इस जगत में बाकी जो कुछ भी है, मेरे पास बाकी जो कुछ भी है, ये घर है, गाड़ी है, बंगलो है, संतान है, सुख है, समृद्धि है, वो सब इसकी है, मेरा कुछ नहीं है इसके अतिरिक्त, मेरा यदि कोई है तो ये भगवान मेरे हैं। तो वास्तव में कहने का अर्थ ये है कि यदि भगवान हमारे हैं तो बाकी सब जो कुछ भी है वो तो सब कृष्ण की संपत्ति है, और जब कृष्ण की संपत्ति है उसे हम प्रसाद के रूप में स्वीकार करते हैं तो फिर तो कोई हानि नहीं है। लेकिन यदि अपना 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 कहकर कॉन्शियसनेस चेंज करनी है कि हमारे पास जो कुछ भी है वो कृष्ण का है, और यदि कृष्ण मेरा है तो फिर जो कुछ भी कृष्ण का है वो हम स्वीकार कर सकते हैं, लेकिन कृष्ण से हटकर, कृष्ण से दूर होकर, कृष्ण भावना से हटकर यदि हम किसी वस्तु को लक्ष्य बनाते हैं, उसको प्राप्त करने की कोशिश करते हैं, तो वो तो नष्ट हो जाएगी और हमें कभी भी आनंद दे नहीं सकेगी। लेकिन यदि कृष्ण हमारे साथ हैं तो हमें कभी भी दुख नहीं मिल सकता, क्योंकि कृष्ण हमारे सबसे बड़े सुहृत हैं। कृष्ण कहते हैं, शरणम सुहृत प्रभव प्रलय स्थानम, मैं ही प्रभव यानी इस सृष्टि का सृजन करना, इस सृष्टि को बनाने वाला, प्रलया यानी मैं ही इस सृष्टि को सृजन करता हूँ और मैं ही इस सृष्टि का संहार करने वाला हूँ, स्थानम मैं ही स्थान हूँ, और निधानम मैं ही आश्रय स्थल हूँ, मैं ही विश्राम स्थल हूँ। भौतिक जगत में जीव करोड़ों जन्मों से बारंबार जन्म ले रहा है लेकिन उसे विश्राम नहीं मिल रहा है, तो विश्राम यदि, निधान यदि कहीं पर होगा, यदि वास्तव में जीव का कल्याण कहीं पर होगा तो मेरे पास ही आकर होगा। बीजम अव्ययम का मतलब होता है बीज, यानी जिसके अंदर से पूरा वृक्ष निकला हो। भगवान कहते हैं मैं बीज हूँ, और भगवान 14.4 में कहते हैं, सर्वयोनि शुकान्तेया मूर्तयः संभवन्ति या तासं ब्रह्म महत्योनिर् अहं बीज प्रदपिता। सर्व योनिषु कौन्तेय, जितनी भी योनिया हैं हे कौन्तेय मूर्तया संभवंतिया, जो यहाँ पर इस भौतिक जगत में प्रकट हुई हैं जन्म द्वारा, तासाम ब्रह्म महत योनि अहम बीज प्रदपिता, और मेरे ही द्वारा प्रकृति को बीज दिया गया जिसके कारण ये सारी योनिया संभव हुई है। लेकिन यहाँ पर भगवान ने कहा बीजम अव्ययम, मैं वह बीज हूँ जो अव्यय है, जिसका कभी नाश नहीं होता, अविनाशी बीज। अभी देखो दूसरा भौतिक जगत के बीज में क्या होता है, जो बीज आप बोते हो धरती के अंदर उसमें से एक वृक्ष निकलता है, परंतु वो बीज जो है वो समाप्त हो जाता है, वो बीज आपको वापस नहीं मिलेगा। भले उस वृक्ष से आपको हजारों दूसरे बीज मिलेंगे, लेकिन वो वाला बीज जो आपने बोया था जिससे वृक्ष निकला है वो बीज वापस नहीं मिलेगा, वो उसका नाश हो जाएगा। लेकिन भगवान कहते हैं मैं वो बीज हूँ जो अव्यय है, जो अविनाशी है, उसका कभी भी नाश नहीं होता है। अतः कृष्ण ही समस्त कारणों के शाश्वत कारण है, और हमें केवल कृष्ण की ही भक्ति करनी चाहिए। यदि हमें कुछ भी चाहिए, चाहे कोई भौतिक वस्तु चाहिए, या चाहे हम आनंद चाहते हैं, आश्रय चाहते हैं, मित्र चाहते हैं, कुछ भी चाहते हैं, तो केवल कृष्ण की भक्ति हमारे जीवन का एकमात्र लक्ष्य होना चाहिए। उसके द्वारा सब कुछ मिलेगा, क्योंकि कृष्ण ही सभी कारणों के शाश्वत कारण हैं, और उनको प्रसन्न करने के लिए हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, कृपया साथ रहिएगा और मेरे लिए प्रार्थना अवश्य कीजिएगा कि मैं अपनी सेवा और साधना को अच्छे तरीके से कर सकूँ।